एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका मेजबान।
और मैं हूँ आपकी साथी मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प विचारक, रोलैंड बार्थेस की दुनिया में।
हाँ, और उनकी एक अहम किताब है इमेज म्यूजिक टेक्स्ट। हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई हम अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, संगीत है, लिखावट है, इनसे मतलब कैसे निकालते हैं।
बिल्कुल,
ये किताब दरअसल निबंधों का एक संग्रह है।
करेक्ट।
पर ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है।
सही कहा।
आज के ज़माने में सोचिए, हम 2400 घंटे मतलब तस्वीरों से, विज्ञापनों से, सोशल मीडिया, संगीत, इनसे घिरे हुए हैं।
बिल्कुल, लगातार।
तो ये समझना कि ये सब हम पर असर कैसे डालते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये किताब हमें वही औजार देती है।
हाँ, मतलब ये हमें सिर्फ एक पैसिव, एक निष्क्रिय दर्शक या पाठक बने रहने से रोकती है।
हाँ,
और एक तरह से एक जागरूक, एक सोचने समझने वाला, आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करती है।
सही का। तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। रोलैंड बार्थेस 1915 से 1980 तक फ्रांस के थे और 20वीं सदी के बहुत ही प्रभावशाली विचारक माने जाते हैं।
हाँ, मैंने सुना इनके बारे में। साहित्यिक, सिद्धांतकार, दार्शनिक, और एक खास शब्द आपने इस्तेमाल किया था शुरू में,
संकेत विज्ञानी, सेमियोटिशन।
सेम्योटिशन। अच्छा, मतलब वो जो संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन करते हैं।
हाँ बिल्कुल, सिग्नल्स और सिंबल्स की स्टडी। उनकी शुरुआत तो देखिए साहित्य और दर्शन से ही हुई थी, क्लासिक्स पढ़े थे उन्होंने, लेकिन फिर वो जल्दी संकेत विज्ञान, संरचनावाद, ये जो नए फील्ड्स आ रहे थे उनमें कूद पड़े।
अच्छा।
कि उन्होंने भाषा विज्ञान के जो सिद्धांत थे उनको ऐसी चीजों पर लागू किया जिनका भाषा से सीधा लेना देना नहीं था।
जैसे, मतलब किन चीजों पर?
जैसे कि फैशन, विज्ञापन, यहाँ तक कि कुश्ती।
कुश्ती, अरे वाह।
हाँ, उनकी एक बहुत मशहूर किताब है माइथोलॉजीज, उसमें वो यही करते हैं। रोजमर्रा की चीजों में, जैसे कोई डिटर्जेंट का विज्ञापन है या कोई कार का मॉडल है, उसमें छुपे गहरे सांस्कृतिक मतलब को खोलकर दिखाते हैं।
कमाल है। मतलब वो सिर्फ ऊंची कला या भारी भरकम साहित्य तक ही नहीं रोके, बल्कि पॉप कल्चर में भी मतलब ढूंढ रहे थे। ये तो वाकई एक अलग ही नजरिया है।
बिल्कुल, और यही उनकी जो अंतः विषय सोच है ना, मतलब अलग अलग विषयों को जोड़कर देखना, यही चीज उन्हें इमेज म्यूजिक टेक्स्ट लिखने के लिए एकदम सही बनाती है।
तो अब किताब पर आते हैं। इसका जो मूल विचार है वो क्या है? आपने कहा कि ये काफी क्रांतिकारी है।
हाँ है। तो देखिए, आम तौर पर हम क्या सोचते हैं कि किसी चीज का मतलब या तो उसे बनाने वाले के इरादे में होता है।
हाँ, कि लेखक ये कहना चाहता
है। बिल्कुल, या फिर वो मतलब उस चीज के अंदर ही कहीं छुपा होता है। बार्थेस इस धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हैं।
तो फिर मतलब आता कहाँ से उनके हिसाब से?
बार्थेस कहते हैं कि मतलब कहीं रखा हुआ नहीं मिलता, वो तो एक सक्रिय प्रक्रिया से बनता है। कैसे? संकेतों से, कल्चरल कोड्स यानी जो हमारे समाज में चीजों के मतलब तय होते हैं उनसे, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से, और सबसे जरूरी देखने या पढ़ने वाले की व्याख्या से, इंटरप्रिटेशन से।
अच्छा, मतलब ये एक तरह का डायलॉग है दर्शक या पाठक और टेक्स्ट के बीच।
बिल्कुल सही। और इसमें दर्शक या पाठक निष्क्रिय नहीं है, वो चुपचाप बैठा सिर्फ सुनिया देख नहीं रहा, वो सक्रिय भागीदार है, मतलब बनाने में उसका पूरा हाथ है। और किताब का एक बड़ा लक्ष्य यही है कि हमें इस निष्क्रिय उपभोक्तावाद से निकालकर एक सक्रिय व्याख्याकार बनाया जाए।
ये तो सुनने में ही कितना मतलब एम्पावरिंग लगता है, पाठक को इतनी शक्ति देना। अच्छा, और किताब की बनावट कैसी है? क्या ये कोई सीधी सीधी थ्योरी बुक है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग निबंधों का संग्रह है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग माध्यमों को देखते हैं। कोई फोटोग्राफी पर है, कोई संगीत पर, कोई साहित्य पर।
अच्छा।
हर निबंध मतलब बनाने की प्रक्रिया के एक अलग पहलू को खोलता है, लेकिन सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बार्थेस का इरादा था कि ये जो सांस्कृतिक समझ है, ये सिर्फ कुछ विशेषज्ञों की जागीर न रहे।
हाँ, सबके लिए हो।
हाँ, इसे डेमोक्रेटाइज करना था, भागीदारी पर जोर देना था।
चलिए, तो फिर कुछ खास निबंधों और आइडियाज में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत फोटोग्राफी से करते हैं। आपने बताया था कि बार्थेस ने फोटोग्राफिक संदेश और छवि का अलंकार जैसे निबंध लिखे हैं।
हाँ,
और आपने ये भी कहा कि वो फोटोग्राफी को विरोधाभासी मानते थे, वो क्यों?
हाँ, वो इसलिए क्योंकि फोटोग्राफी हमें सबसे ज्यादा असली लगती है ना?
हाँ, बिल्कुल।
जैसे बस क्लिक किया और जो था वो आ गया।
एग्जैक्टली
जैसे कैमरे ने बस सच्चाई को हूबहू छाप दिया। लेकिन बार्ट्स कहते हैं कि ये जो है ना, ये सच्चाई का एक भ्रम है। एक फोटोग्राफ भी उतनी ही रची हुई, उतनी ही कोडित होती है जितनी कोई पेंटिंग या कोई लेख।
अच्छा, कोडित? कैसे?
यहीं पर वो दो बहुत जरूरी शब्द लाते हैं, डिनोटेशन और कनोटेशन।
डिनोटेशन और कनोटेशन, हाँ ये शब्द सुने तो हैं, इनका मतलब क्या है आसान भाषा में?
देखिए, डिनोटेशन है किसी तस्वीर का बिल्कुल शाब्दिक सीधा मतलब, जो आप सीधे सीधे देख रहे हैं।
जैसे?
जैसे एक तस्वीर में एक लाल गुलाब है, तो डिनोटेशन है एक लाल रंग का फूल जिसे गुलाब कहते हैं, बस।
ठीक है।
लेकिन कनोटेशन है उस चीज से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक प्रतीकात्मक अर्थ। वही लाल गुलाब प्यार का प्रतीक हो सकता है, रोमांस का हो सकता है,
या शायद किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा भी।
बिल्कुल, या खतरे का निशान भी। ये मतलब तस्वीर में होता नहीं है, ये हम अपनी संस्कृति, अपने समाज से सीखे हुए कोड्स के जरिए उसमें डालते हैं या उससे निकालते हैं।
ओहो, तो मतलब ये अर्थ कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर के कोड्स से जुड़ा है, सीखा हुआ है।
हाँ बिल्कुल, सीखा हुआ और सामाजिक। यहीं पर अर्थ के सामाजिक निर्माण का विचार आता है, मतलब मीनिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। बार्ट्स से समझाने के लिए एक बहुत मशहूर उदाहरण लेते हैं, पांजानी पास्ता के विज्ञापन का।
हाँ, पांजानी इटालियन पास्ता।
हाँ, वो दिखाते हैं कि एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले विज्ञापन में भी मतलब की कई परतें होती हैं। एक तो है भाषाई संदेश, जो भी टेक्स्ट लिखा है विज्ञापन में।
ठीक।
फिर है गैर संकेतिक आइकॉनिक संदेश, मतलब चीजों की सीधी पहचान, अरे ये टमाटर है, ये प्याज है, ये पास्ता के पैकेट है। और फिर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, संकेतिक आइकॉनिक संदेश।
संकेतिक आइकॉनिक, ये क्या है?
ये है तस्वीर में मौजूद चीजों से जुड़े हुए सांस्कृतिक प्रतीक। जैसे उस विज्ञापन में सब्जियां एक नेट बैग से ऐसे बाहर गिर रही हैं, मानो अभी बाजार से ताजा खरीद कर लाए हों। रंगों का इस्तेमाल, लाल, हरा, सफेद, जो इटली के झंडे के रंग है।
अच्छा,
ये सब मिलकर एक खास भाव जगाते हैं, इटालियनिता का, मतलब ताजगी, घर का बना खाना, एक पूरी इटालियन पहचान।
हाँ, ये बात तो है, विज्ञापनों में ऐसा होता है।
और बार्ट्स कहते हैं कि ये सब मिलकर एक इतना स्वाभाविक लगने वाला मतलब बनाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये रचा हुआ है। ये एक अलंकार है, एक रिटोरिक है। हमें लगता है फोटो बस सच्चाई दिखा रही है, पर असल में वो हमें एक खास तरीके से सोचने और महसूस करने के लिए मना रही है।
और यहीं पर शायद उनकी वो बात फिट होती है जो आपने पहले बताई थी, फोटोग्राफ बिना कोड वाला संदेश है। मतलब वो दिखती सीधी है पर होती नहीं।
बिल्कुल, वो उसकी भ्रामक स्वाभाविकता की तरफ इशारा है।
कमाल है, हम रोज मतलब रोज कितने विज्ञापन और तस्वीरें यूं ही देख लेते हैं और वो चुपचाप हमारे दिमाग में मतलब बढ़ते रहते हैं।
सही कहा।
भारत में भी तो यही होता है। सोचिए कितने विज्ञापनों में एक खास तरह के आदर्श परिवार की छवि होती है, या मॉडर्निटी की एक खास परिभाषा छिपी होती है।
बिल्कुल सही, ये हर जगह है। अच्छा, फोटोग्राफी के बाद बार्ट्स हमें एक और भी ज्यादा कह सकते हैं रहस्यमय विचार की ओर ले जाते हैं, तीसरा अर्थ, द थर्ड मीनिंग।
तीसरा अर्थ? पहले दो कौन से थे?
पहले दो तो वो थे जो आमतौर पर समझ आते हैं। पहला सूचनात्मक, मतलब तस्वीर में क्या जानकारी है, क्या हो रहा है। दूसरा प्रतीकात्मक, मतलब उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, क्या संदेश छिपा है।
ठीक है, तो ये तीसरा क्या है?
ये थोड़ा पकड़ में ना आने वाला है। बार्ट्स खुद इसे स्थूल या ऑब्ट्यूस कहते हैं। ये तस्वीर के उन छोटे छोटे डिटेल्स में छिपा होता है जिनका कहानी या प्रतीक से कोई सीधा लेना देना नहीं बनता।
जैसे कि
त्वचा की कोई अजीब सी बनावट हो, या बालों का कोई खास स्टाइल जो कहानी के लिए जरूरी न हो, या मेकअप का कोई ऐसा तरीका जो थोड़ा हटके लगे। ये जानबूझकर डाला गया संदेश नहीं है। लेकिन फिर भी वो डिटेल हमें छू जाता है, एक अतिरिक्त मतलब का एहसास कराता है, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है।
ओ अच्छा, मतलब ये वो चीज है जो पूरी तरह हमारी पकड़ में नहीं आती, शायद एक बहुत ही व्यक्तिगत एहसास जैसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। ये अर्थ की बहुलता की ओर इशारा करता है, मतलब किसी भी टेक्स्ट या इमेज में हमेशा उससे ज्यादा मतलब छुपा होता है जितना हम समझ पाते हैं या जितना शायद बनाने वाले ने सोचा भी ना हो। ये हमें याद दिलाता है कि मतलब कभी भी पूरी तरह से बंद या फिक्स्ड नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ बच निकलता है।
दिलचस्प है। अच्छा, अब संगीत की बात करते हैं। आवाज का दाना, द ग्रीन ऑफ द वॉइस, इस निबंध में बार्ट्स क्या कहते हैं?
इसमें बार्ट्स संगीत के बारे में लिखने की जो मुश्किल है उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम संगीत के बारे में लिखते हैं या बात करते हैं तो या तो हम बहुत तकनीकी हो जाते हैं, सुर सही था, ताल ठीक थी वगैरह,
हाँ, या फिर बहुत अस्पष्ट।
बिल्कुल, या फिर भावनाओं के बारे में अस्पष्ट सी बातें करते हैं, बहुत भावुक गायकी थी, आवाज में दर्द था।
हाँ, ये होता है।
बार्ट संगीत को महसूस करने का एक अलग तरीका सुझाते हैं, ग्रेन या आवाज के दाने के जरिए।
आवाज का दाना, ये क्या चीज है?
ग्रेन का मतलब सिर्फ आवाज की मिठास या तकनीकी परफेक्शन नहीं है, ये है आवाज की भौतिकता, उसकी मटीरियलिटी, गायक के शरीर की उपस्थिति का एहसास।
शरीर की उपस्थिति मतलब?
मतलब वो खुरदुरापन, वो बनावट, वो सांस लेने का तरीका, वो आवाज का टेक्सचर, जिससे हमें लगता है कि सिर्फ एक मशीन से निकली हुई परफेक्ट आवाज नहीं है बल्कि एक जीते जागते शरीर से आ रही है।
अच्छा,
ये अर्थ निर्माण में शरीर और भौतिकता के महत्व को दिखाता है कि मतलब सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर से भी महसूस होता है।
क्या इसका कोई उदाहरण भी देते हैं वो?
हाँ, बार्ट्स दो गायकों की तुलना करते हैं, एक चार्ल्स पैंजेरा और दूसरे डीट्रिच फिशर डिस्काउ। वो मानते हैं कि फिशर डिस्काउ तकनीकी रूप से शायद ज्यादा परफेक्ट है, उनकी आवाज बहुत पॉलिश्ड है, लेकिन शायद उसमें वो ग्रेन, वो शरीर का एहसास कम है। जबकि पैंजेरा की आवाज में भले ही वो तकनीकी रूप से कम परफेक्ट हो, वो दाना, वो शारीरिक उपस्थिति ज्यादा महसूस होती है।
अच्छा,
और ये रूप और अर्थ के संबंध पर भी जोर देता है। मतलब सिर्फ क्या गाया जा रहा है, कंटेंट, यही नहीं बल्कि कैसे गाया जा रहा है, फॉर्म, आवाज की अपनी बनावट भी मतलब पैदा करती है।
ये तो संगीत सुनने का बिल्कुल ही नया नजरिया है। मतलब सिर्फ सुर और ताल नहीं बल्कि आवाज की अपनी बनावट, उसका दाना महसूस करना।
हाँ,
अब आते हैं उनके सबसे शायद विवादास्पद या कम से कम सबसे चर्चित विचार पर, लेखक की मृत्यु, द डेथ ऑफ द ऑथर। ये सुनने में ही बड़ा नाटकीय ऐसा लगता है, क्या मतलब है इसका?
हाँ, ये वाकई लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक धमाका था। बार्ट्स का तर्क है कि जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई किताब, कविता, कुछ भी, तो हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि लेखक का क्या मतलब था या लेखक क्या कहना चाहता था।
बंद कर देना चाहिए, लेकिन क्यों?
उनका कहना है कि एक बार रचना पब्लिक में आ गई, दुनिया में आ गई, तो लेखक का उस पर से कंट्रोल, उसका एकाधिकार खत्म हो जाता है। लेखक ने अपना काम कर दिया, अब वो साइड में है।
तो फिर अर्थ कौन तय करेगा? अगर लेखक नहीं तो कौन?
पाठक, रीडर। बार्ट्स का वो मशहूर वाक्य है, पाठक का जन्म लेखक की मृत्यु की कीमत पर होना चाहिए।
ओहो,
मतलब फोकस लेखक के इरादे से हटकर पाठक की व्याख्या पर आ जाना चाहिए। अर्थ हर बार पढ़ने की क्रिया में पाठक द्वारा सक्रिय रूप से बनाया जाता है, लेखक का जो भी इरादा रहा हो वो अब अप्रासंगिक है।
ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सक्रिय पाठक दर्शक का विचार हुआ और एक तरह से प्राधिकरण यानी अथॉरिटी की आलोचना भी हुई।
बिल्कुल, चाहे वो लेखक की अथॉरिटी हो या किसी बड़े आलोचक की जो कहता है कि नहीं, इसका यही मतलब है। बार्ट्स कहते नहीं, मतलब खुला हुआ है।
लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पाठक कुछ भी मतलब निकाल सकता है? फिर तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा, मतलब पूरी अराजकता फैल जाएगी।
हाँ, ये एक आम चिंता है जो उठाई जाती है। देखिए, बार्ट्स का मतलब ये नहीं कि हर व्याख्या बराबर है या हर कुछ जायज है। उनका पॉइंट ये है कि अर्थ का जो अल्टीमेट सोर्स है वो लेखक नहीं है।
हाँ,
व्याख्या हमेशा पाठक के अपने संदर्भ, उसकी अपनी समझ और जो समाज के सांस्कृतिक कोड्स हैं उनसे बंधी होती है। ऐसा नहीं कि आप हवा में कोई भी मतलब निकाल लेंगे।
अच्छा,
और इसी से जुड़ा उनका एक और कॉन्सेप्ट है, वो कार्य, वर्क, और पाठ, टेक्स्ट के बीच फर्क करते हैं।
कार्य और पाठ, वर्क एंड टेक्स्ट।
हाँ, कार्य यानी वर्क, वो भौतिक किताब है जो आप हाथ में पकड़ते हैं, जिसे लेखक ने लिखा है, वो एक सीमित चीज है। लेकिन पाठ यानी टेक्स्ट, वो असीमित संभावनाओं वाला क्षेत्र है जो पढ़ने की क्रिया से खुलता है।
अच्छा, तो पाठ एक तरह से खुला मैदान है जहाँ कई रास्ते, कई मतलब संभव हैं।
बिल्कुल, पार्ट हमेशा खुला होता है। बार्ट्स की एक और मशहूर लाइन है, पाठ संस्कृति के असंख्य केंद्रों से लिए गए उद्धरणों का एक ताना-बाना है।
ताना-बाना जैसे कपड़ा बुना जाता है।
हाँ, मतलब कोई भी टेक्स्ट अकेला या ओरिजिनल नहीं होता, वो हमेशा दूसरे टेक्स्ट्स, दूसरे विचारों, पहले से मौजूद सांस्कृतिक धागों से बुना होता है। इसे इंटरटेक्स्टुअलिटी भी कहते हैं। तो पाठ जो है वो बहुल है, प्लूरल है, उसमें कई आवाजें हैं, कई मतलब की संभावनाएं हैं, और पाठक उसमें सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक भागीदार है। वो उस ताने बाने को खोलने और समझने में मदद करता है।
वाह, तो ये सारे जो विचार हैं, डिनोटेशन, कॉनोटेशन, तीसरा अर्थ, आवाज का दाना, लेखक की मृत्यु, कार्य और पाठ का फर्क, ये सब मिलकर हमें सिखा क्या रहे हैं? इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है?
ओ, इनका तो बहुत गहरा लेना देना है। सबसे पहले तो सोचिए मीडिया साक्षरता के बारे में, मीडिया लिटरेसी।
हाँ, कैसे?
बार्ट्स हमें सिखाते हैं कि विज्ञापनों को, न्यूज की तस्वीरों को, फिल्मों को, यहाँ तक कि नेताओं के भाषणों को कैसे आलोचनात्मक ढंग से देखें। हम ये सवाल पूछना सीख सकते हैं, अच्छा यहाँ सीधे सीधे क्या दिखाया या कहा जा रहा है, डिनोटेशन, और इसके जरिए क्या भावनाएं, क्या विचार जगाए जा रहे हैं, कॉनोटेशन, कौन सी विचारधारा को, कौन सी सोच को सामान्य या नेचुरल बनाकर पेश किया जा रहा है।
हाँ, ये सवाल पूछना शुरू करें तो मीडिया का जो पर्दा है वो हटने लगता है। ये तो बहुत जरूरी इसके लिए आज के जमाने में।
बिल्कुल, और सोचिए शिक्षा में इसका क्या उपयोग हो सकता है।
शिक्षा में?
हाँ, छात्रों को सिस जानकारी रटाने के बजाय उन्हें सक्रिय विचारक बनाना, उन्हें सिखाना कि टेक्स्ट की एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सकती हैं, उन्हें ये सिखाना कि मतलब हमेशा सीधा और सपाट नहीं होता, उन्हें अपने आसपास की दुनिया, फिल्में, गाने, विज्ञापन, इनका विश्लेषण करना सिखाना।
हाँ, मतलब उन्हें सिर्फ जवाब रटना नहीं, सवाल पूछना सिखाना।
एग्जैक्टली। और फिर सोचिए रचनात्मक क्षेत्रों के बारे में, जो लोग लिखते हैं, कलाकार हैं, मार्केटिंग में हैं,
उनके लिए ये कैसे काम का है?
उनके लिए ये समझना जरूरी है कि उनके दर्शक या पाठक उनके काम का मतलब कैसे निकालेंगे। ये जानना कि उनका संदेश हमेशा उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो चाहें तो जानबूझकर अस्पष्टता या मल्टीपल मीनिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पाठक को सोचने पर मजबूर करें।
ये बात तो निजी बातचीत पर भी लागू होती है ना।
हाँ।
हम जो कहते हैं सामने वाला उसे अपने कल्चरल फ्रेमवर्क से कैसे समझता है, ये जानना कितना जरूरी है।
स्थिति में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है।
डिजिटल संस्कृति जैसे
मीम्स को देखिए, उनका मतलब कैसे बदलता रहता है, लोग उन्हें कैसे रीमिक्स करते हैं, वायरल कंटेंट कैसे फैलता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज में कैसे लोग मिलकर किसी चीज का मतलब तय करते हैं। बार्ट्स के विचार इन सब चीजों को समझने की एक चाबी देते हैं।
वाह, मतलब ये विचार आज भी उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे अहम सीख या कोई ऐसी बात जो आपको चौंका गई हो वो क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला विचार यही रहा कि जो चीजें हमें बिल्कुल स्वाभाविक या नेचुरल लगती हैं वो भी असल में कितनी रची हुई होती हैं। खासकर तस्वीरें और विज्ञापन, वो डिनोटेशन ऑफ कनोटेशन वाला जो फर्क है ना।
हाँ।
उसे समझने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। आप हर चीज में वो छिपे हुए संदेश, वो कोड्स पढ़ने लगते हैं। ये काफी दिलचस्प है।
हाँ, ये तो है। और मेरे लिए शायद वो लेखक की मृत्यु वाला विचार, वो सुनने में जितना रेडिकल लगता है उतना ही मुक्तिदायक भी है। ये पाठक को एक तरह की आज़ादी देता है, ये कहता है कि आपकी व्याख्या भी मायने रखती है, आपका सोचना मायने रखता है।
सही।
और हाँ, वो आवाज़ का दाना वाली बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। संगीत को सिर्फ सुनने के बजाय महसूस करने का एक नया आयाम।
सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो रोलन बार्ट्स हमें दिखाते हैं कि मतलब कोई खोजने वाली चीज नहीं है, वो बनाने वाली चीज है।
हाँ।
वो हमें मीडिया और संस्कृति को एक आलोचनात्मक नजर से देखने के औजार देते हैं, और सबसे बढ़कर वो पाठक या दर्शक को सशक्त बनाते हैं।
तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सोचने वाला काम छोड़ जाते हैं।
हाँ।
अगली बार जब आप कोई बहुत दमदार विज्ञापन देखें या कोई ऐसी तस्वीर जो आप पर बहुत गहरा असर छोड़े, तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए आप सच में क्या देख रहे हैं, डिनोटेशन, और आपको क्या महसूस करने या क्या मानने के लिए उकसाया जा रहा है, कनोटेशन, क्या कोई छिपा हुआ सांस्कृतिक संदेश है उसमें।
ये छोटा सा सवाल आपको रोलन बार्ट्स की इस रोमांचक दुनिया में ले जा सकता है, और कौन जाने शायद आपके आसपास की दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व,
एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।